the little things you have to bear in mind. Mirandasya, Nananjana Chalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kada Mahyam Tadati Svapadantikam, Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanditamcha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamin Miti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो विषय कौन सा हो रहा है? भक्ति लता। तो भक्ति लता का विषय है, और जब सिंचन करते हैं हम श्रवण श्रवण कीर्तन आदि के जल से उस भक्ति लता बीज को, तो उस वो बीज अंकुरित होता है और भक्ति लता प्रकट होती है। बढ़ते बढ़ते वो गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है, ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा पार करके, वैकुंठ लोकों को पार करके, और वहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय स्वीकार करके अपने वास्तविक फल को प्रदान करती है, और वो फल है कृष्ण प्रेम। और यदि उस किसी भी एक भक्त की भक्ति लता इतनी बढ़ गई है कि वो गोलोक वृंदावन पहुंच गई है, प्रेम कृष्ण प्रेम का फल भी प्राप्त हुआ है, फिर भी महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर स्थित जो भक्त है, जो एक दिव्य माली बना है, तो उसे श्रवण कीर्तन आदि त्यागना नहीं चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कितना भी वो उन्नत क्यों न हो उसकी पतन हो जाएगी। और साथ साथ महाप्रभु ये भी कहते हैं कि हृदय में भक्ति लता बीज तो मिल जाती है गुरु और कृष्ण की कृपा से, परंतु इस भक्ति लता बीज के अतिरिक्त और हमारे पूर्व संस्कारों के द्वारा प्रदत्त अन्य बीज भी रहते हैं, जिनको अन्य अभिलाषा बीज कहते हैं, अन्याभिलाषा बीज, यथा कर्म बीज, ज्ञान बीज इत्यादि। तो जब श्रवण कीर्तन होता है, जो कि भक्ति लता बीज के लिए जल है, तो ये अन्य अभिलाषा बीज भी हैं, उनको भी पोषण प्राप्त होता है, वो भी बढ़ने लगते हैं। और यदि भक्त सावधान नहीं रहता तो वो इन अन्य अभिलाषा बीजों से उत्पन्न होने वाले जो लताएं हैं, उनका आश्रय लेगा, उनको सही समझेगा, उनको प्राप्य कोई वस्तु समझेगा या लापरवाही किसी तरह का करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी भक्ति लता, वो उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। और हमने पिछली बार देखा था कि वो कौन से उपशाखाएं हैं जो अन्याभिलाषा बीजों से उत्पन्न होते हैं, और इनके बारे में हम सबसे पहले तो इनको पहचानना है कि ये कौन सी उपशाखाएं हैं। जैसे कोई माली होता है, जब उसने किसी एक फूल का बीज बोया होगा और तुरंत तो फूल नहीं आएगा, पहले पौधा निकलता है और उस समय पता नहीं चलता है एक नौसुखिया माली को कि ये पौधा किसका है। साथ साथ अन्य पौधे भी आएंगे, जो अन्य बीज पहले से जमीन में पड़े हुए हैं वो भी अभी अंकुरित होकर प्रकट हो रहे होंगे जमीन के ऊपर। तो यदि माली अनुभवी नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा कि उपशाखा कौन सी है, और वास्तव में जो हमारे जो चाहिए था वांछित जो एक हमें पौधा चाहिए था वो कौन सा है। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले भक्त को चाहिए कि वो पहचान ले कि भक्ति लता कौन सी है और उपशाखाएं कौन सी हैं, अर्थात भक्ति लता के लक्षण क्या हैं और उपशाखाओं के लक्षण क्या हैं, पहचान क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें अच्छी तरह से पहचान करा के दे रहे हैं कि देखो ये सारी उपशाखाएं हैं, इनसे सावधान रहना। तो कल शाम को हम लोग चर्चा कर रहे थे संक्षेप में इनके बारे में, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए ताकि हमारी भक्ति लता बढ़ती रहे। हाँ, इसीलिए तो गुरु चाहिए ना। गुरु क्या करते हैं,
कैसे संभव हो सकता है कि ये,
क्योंकि जैसे समझो एक व्यक्ति माली का काम सीख रहा है और एक बहुत अनुभवी माली उपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधों को संभालना चाहिए, और बोलता दी देखो बीज इस तरह से बोना चाहिए, इस तरह की मिट्टी चाहिए, यहाँ मिट्टी में ऐसे ऐसे बोते हैं, उसके बाद में तुम पानी इतना दिया करो, इस समय पे दो, इस समय पे दो। और फिर जब वो पौधा उगेगा उसके साथ साथ अन्य जो बीज हुए होंगे वो भी उगने लगेंगे, तो किस लिए हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसने गुरु स्वीकार किया इसलिए वो उपशाखा उगेंगे नहीं, क्योंकि पहले से वो बीज है ना, उधर गुरु को मिलने से पहले ही वो बीज अंदर पड़े हैं ना। जैसे माली को मिलने के पहले ही वो मिट्टी में पहले के बीज पड़े थे ना, उसी तरह से ये पहले वाले बीज एक साधक भक्त के, नौसुखिया भक्त के हृदय में है, अन्याभिलाषा बीज जो अनेक जन्मों से चलते आए हैं वो तो वहां पर है, तो वो तो उगेंगे। क्यों उगेंगे, हाँ पहले से है लेकिन पहले उगे नहीं थे, अभी क्यों उग रहे हैं। पोषण मिल रहा है, जल मिल रहा है, श्रवण आदि का जल दे रहे हैं तो वो उग रहे हैं। तो चाहे कोई गुरु स्वीकार करे ना करे लेकिन वो उगेंगे। लेकिन जब उगने लगेंगे तो सच्चा यदि भक्त हो, शिष्य हो, तो वो पहचान लेगा। और यदि वो पहचानेगा नहीं, पहचानने में समर्थ नहीं है वो, अरे मैं तो अभी ज्यादा पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जा रहा हूँ, मैं मुझे संभल जाना चाहिए, नहीं नहीं मेरे अंदर घमंड बहुत आ रहा है, मैं नम्र नहीं हो रहा हूँ, तो यदि वो बुद्धिमान है, सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा, तो अपने आप को संभाल लेगा। वो पहचान पाएगा कि हृदय में जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, पकड़ लेगा, अरे नहीं नहीं ये मैं काम करने जा रहा हूँ क्यों, ताकि मुझे प्रतिष्ठा मिले, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप वो पहचान लेगा एक सावधान बुद्धिमान भक्त। परंतु कोई सावधान न हो या सावधान होकर भी पहचानते हुए भी वो जानबूझकर उसको पोषण देना चाह रहा है, उसका भोग करना चाह रहा है, तब गुरु होंगे। गुरु जो बताते हैं ये क्या चल रहा है ऐसा नहीं, वो भी उखाड़ने में मदद करेंगे। इसलिए कभी कभी गुरु का कर्तव्य क्या होता है, ताड़न करना यह और कुछ उपदेश देना ताकि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, इस तरह से।
इसमें बताइए श्रवण कीर्तन आदि से श्रवण,
कृष्ण कथा है श्रवण, यहाँ तो और भक्ति लता की बात हो रही है ना, तो श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में हो रहा है, ये तो साधारण
उससे ये वांछा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, कीर्तन से जब सिंचन होता है
हाँ,
तो उसी के कारण ये सब अवांछित लताएं भी
ठीक उसी तरह से कि जैसे उसी पानी को डालने से तरह तरह के बीज उत्पन्न होते, जैसे अपना वांछित बीज भी उत्पन्न होगा, पौधा बनेगा और दूसरे से वो भी पौधे बन जाएंगे। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताने वाले हैं, अभी आगे महाप्रभु बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि श्रवण आदि जल है तो जल अपना काम करेगा ना, भक्त की जिम्मेदारी है कि वो पहचाने कि उपशाखा कौन सी है और भक्ति लता कौन सी है, क्योंकि वो पहले से है, और यदि भक्ति ठीक करता रहेगा वो, तो फिर वो उन उपशाखाओं को उखाड़ने में समर्थ रहेगा, उखाड़ना चाहिए उनको, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। समझ गए, जैसे पानी से सारे बीज अंकुरित होते हैं, उसी तरह से श्रवणादि के जल से सारे बीज अंकुरित होते हैं, और जो अंकुरित हो भी चुके होंगे उनको पोषण मिलता है। जैसे जब भक्ति करने लगते हैं, जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, तो सम्मान लोग देने लगते हैं, तो सम्मान देने जब लगते हैं वो उनकी बात है, लेकिन हमारे लिए उपशाखा क्या है कि उस सम्मान को हम चाहेंगे, कि उस सम्मान को, उस प्रतिष्ठा को हम मूल्यवान समझेंगे, प्राप्त करने योग्य समझेंगे, तब समस्या हो जाती है। समस्या ये नहीं है कि कोई सम्मान दे रहा है, समस्या ये है कि उस सम्मान जब मिलेगा हमको तो हम क्या सोचेंगे और हमारा बर्ताव क्या होगा उस समय, हमारी मनोवृत्ति, हमारी भावना कैसे बदलेगी, ये समस्या है, और ये हमारे अन्याभिलाषा बीज के ऊपर निर्भर है, और हमारी भक्ति की शक्ति। यदि वास्तव में हमारी भक्ति बहुत शक्तिशाली है तो इन चीजों के परे हम हो सकते हैं, परंतु यदि हमारी भक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है तो इन चीजों से हम बह जाएंगे। बड़े बड़े देवतागण भी बह जाते हैं, इंद्रदेव को राजपद चाहिए स्वर्ग लोक का, तो पृथु महाराज को हैरान किया अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़ा चुरा के लेके, एक बार नहीं अनेकों बार, क्यों? प्रतिष्ठा चाहिए थी, वो पद चाहिए था, मुझे नहीं मिला तो ये इसने 100 यज्ञ कर दिए, तो इंद्र अब पृथु महाराज अब इंद्र बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो बड़े बड़े भक्तों में भी, देवतागण में भी ऐसे कभी कभी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत सावधान रहना चाहिए।
साधु या गुरु या वरिष्ठ भक्त रहते हैं, वो प्रतिष्ठा से हमेशा दूर रहते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनके उनसे प्रेम करने के कारण, उनको बहुत ही प्रेम करने के कारण कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गुरु नहीं चाहते कि मेरे लिए ये सब, फिर उनको अपने शिष्यों को कभी प्रताड़ित करते हैं, डर के मारे सोचता है कि मुझे नहीं ऐसे करना चाहिए,
होना तो चाहिए ना। वो बोलते हैं कि यदि जो भी गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कहते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं करना चाहिए ना,
लेकिन वो गुरु के सम्मान के लिए होता है।
जो भी हो, जो भी हो, जब वो हाँ कहेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं ना, जब वो कहेंगे ऐसे नहीं करना, मेरे को पानी नहीं चाहिए, नहीं नहीं आपको पानी पीना ही होगा, हम आपको ऐसा नहीं चलेगा ना।
नहीं, लेकिन महाराज वो शिष्य के भक्ति में प्रगति कर,
ठीक है, वो देखेंगे ना आवश्यक क्या है क्या नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है ना देखना, तो उनके ऊपर क्यों छोड़ते नहीं है ना। वो देखेंगे बराबर है। हाँ, किसी का प्रश्न था कोई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 107 श्लोक। सेक जल पान उप शाख बढ़ी जाए, स्तब्ध हन मूल शाखा बाड़ीते न पाए। सेक जल मतलब जो छिड़का हुआ जो जल है, या तो सिंचन किया हुआ जल है, पाना उसको प्राप्त करके उपशाखा बाड़ी जाए, ये प्रश्न था ना। तो वो जल को पाके, सेचा हुआ जल पाके, जो उपशाखा भी बढ़ने लगती है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। स्तब्ध होना मूल शाखा बाड़ीते न पाए, तो फिर वो जो मूल शाखा है वो स्तब्ध होकर बढ़ नहीं सकती है, क्यों? बाकी उपशाखा इतने बढ़ गए कि उसको रोक दिया। जैसे कभी कभी हम लोग कोई पेड़ वगैरह लगाते हैं, दूसरे बड़े पेड़ यदि उसके साथ साथ उगते हैं तो ये उग नहीं सकता है, कम ही रहता है, ऐसा महाप्रभु यहाँ बोल। हाँ,
एक बार बोल रहे कि भक्ति कर्म का जो हमारा बीज है ना महाराज, वो बीज को ही पूरा नाश करते
हैं। हाँ,
ऐसे भी बोलते हैं।
हाँ, लेकिन भक्ति वैसा तीव्र होना चाहिए, भक्ति उतना तेज होना चाहिए, और बीज भी तरह तरह के होते हैं, और कई बीज जल्दी नष्ट हो जाते हैं, कई बीज थोड़े ज्यादा समय तक जलते नहीं है, आग लगाने पर भी थोड़ा समय लगता है जलने में, कई बीजों को और भी ज्यादा समय लगता है जलने के लिए। तो जैसे जैसे बीज होते हैं वैसे वैसे अपने अपने समय पर वो जलते हैं, आग होने पर भी, और वो आग की तीव्रता कितनी है ये भी आवश्यक है। यदि हमारी साधना इतनी पक्की नहीं है, हल्के हम ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, कुछ ज्यादा गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो हल्का हो जाए। वो अकबर बीरबल की कहानी एक बार बताई थी ना मैंने, याद है? किसको याद है वो, कोई बता सकेंगे?
हाँ
बताओ, कहानी बताओ। पता है, याद है? बताओ ब्रदर सिंह प्रभु। थोड़ा जोर से सभी सुन सके।
कि एक व्यक्ति था, अकबर ने कहा था कि ठंडे पानी में
वही
तो कौन ऐसा ठंडे पानी में रह सकता है,
यमुना के जल में,
ठंडे नदी में,
ठंडे में दिसंबर महीने में, मार्गशीर्ष महीने में, यमुना के ठंडे जल में, यहाँ तक रात भर कौन खड़े हो सकता है, उसको पुरस्कार मिले।
गांव में ढिंढोरा पिटा गया, तो उसमें एक गरीब व्यक्ति आया और उसने नदी में जाकर पूरा रात भर उसने उसमें रुका ठंडे पानी में। फिर वो आया दूसरे दिन, तो अकबर कहा कि मैंने ऐसा रुका हूँ, तो उसको पुरस्कार अभी देना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि एक लाइट था उसकी रोशनी, इसको गर्मी महसूस हो रही थी, तो इसलिए
मंदिर के ऊपर था वो,
तो अकबर को ऐसा कहा गया कि इसको भी धन पैसा नहीं देना चाहिए बख्शीश। तो इस प्रकार से फिर तो जो व्यक्ति था नाराज हो गया कि इतना मैं पूरा रात भर इसमें खड़ा रहा और फिर भी मुझे पुरस्कार नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद फिर बीरबल के पास गए, बीरबल को कहा, बीरबल ने कहा मैं आपको ये करता हूँ, अकबर भी हर रोज अपने दरबार में जाते थे अकबर के पास उनके काम करने के लिए, बीरबल नहीं गए, तो अकबर ने कहा कि बीरबल आज आए नहीं हमारे यहाँ पर, तो देखो क्या हो गया। पाए गए बुलाने के लिए, और तब अकबर ने अपने घर में वो कुक कर रहे थे बीरबल, तो नीचे आग थी और उसका
वैसे राजा अकबर को उन्होंने भोजन पे बुलाया था घर में, बातों बातों में, तो बीरबल ने कहा उस व्यक्ति से, मैं इसका सॉल्यूशन उपाय निकालूंगा लेकिन आराम से। तो एक दिन अकबर को बीरबल ने घर बुलाया, तो कितने बजे आऊं प्रसाद के लिए? बोले 12 बजे आइए। तो अकबर पहुंच गए ठीक 12 बजे, और बीरबल के साथ चर्चा करते करते प्रसाद का नाम नहीं, समय बीत रहा है। फिर क्या हुआ, 12:30 बज गए, 1 बज गया, बीरबल क्या है प्रसाद, आ रहा है हुजूर हुजूर आ रहा है। फिर
अकबर गए, कहा है तुम्हारे रसोई में, कहा
3 बजे थे पूरे।
तो किधर है दिखाओ, तो अकबर भी गए खुद देखने के लिए। तो अकबर जी देखे कि ऊपर मटका लगाया है घर के शिखर,
छत के ऊपर ऐसे अंदर ऊपर मटका है चावल का,
नीचे आग
आग यहाँ जमीन पे लगी है।
तो फिर बीरबल जी अकबर कहने लगे कि ऐसे कैसे होगा कि इधर से आग उसको वहां तक जाकर पहुंचेगी,
तो ऐसे चावल कैसे पकेगा यहाँ का ये है, तो
फिर? तो क्यों नहीं पहुंचेगी, बीरबल ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो आदमी पानी में, ठंडे पानी में था तो उधर से उसको गर्मी मिल सकती है वो रोशनी, तो उससे इधर भी मिलना चाहिए उसी प्रकार से। अकबर को याद उसका ये हो गया कि ऐसे नहीं हो सकता।
बहुत अच्छा, तो इसका तात्पर्य क्या हमारे लिए?
तीव्र भक्ति हमारे अंदर जब
तक चाहिए
नहीं होगी तब तक वो हमारे जो भी अंदर कल्पना से बीज है उसको नष्ट नहीं कर सकते।
यदि हमारा भी भक्ति है, छोटा आग है और वह इतने दूर से चल रहा है, कोई जलेगा नहीं, करने कहने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन आग में तीव्रता नहीं है, तो वो भी पकेंगे कर्म के बीज, अपना समय लगेगा, वो आराम से पकेंगे, कब पकेंगे वो पता नहीं, धीरे 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 से पकेंगे वो। यदि हमको उनको जल्दी से पकाना है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ये जल्दी से पक जाएंगे परंतु भक्ति की आग इतनी तीव्र हो तब पकेगी, नहीं तो नहीं जाती। एक दिन जब हम और एक बार ब्रह्मचारी क्लास करेंगे कभी, तो हम आपको माधुर्य कदम्बिनी की एक श्रृंखला बताएंगे जिसमें ये बताया है कि कैसे कब कब कौन से पाप क्षीण हो जाते हैं भक्ति करते करते, कौन से बीज कब नष्ट होते हैं भक्ति के स्तर में, अलग अलग स्तरों में। भक्ति का स्तर शुरुआत होता है यहाँ से और प्रेम भक्ति का स्तर यहाँ है, तो ऐसे जाते जाते इस तरह का कर्म बीज नष्ट होता है, यहाँ आने से दूसरे प्रकार का बीज नष्ट होता है, यहाँ से और एक प्रकार का नष्ट होता है, इस तरह से करते 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 यहाँ तक अंततः सारे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए थोड़े बीज काफी समय तक रह जाते हैं। ठीक है,
पाप पुण्य जो हमने किया है ये भी समझते थे कि स्पेसिफिक अगर पाप पुण्य जो है तो ये भी नष्ट हो जाएगा, और इसके अलावा जो बाकी सब है उसके बारे में ज्यादा चर्चा है।
मतलब पाप पुण्य जो हमने किए हैं वही तो है, ये सारे बीज
अपार्ट फ्रॉम दैट और
नहीं जितने भी बाकी के हमारे अन्य अभिलाषा बीज है वो सब आ जाते हैं इसमें, कोई ना कोई भुक्ति हो मुक्ति हो ये सब चीजें उनमें आ जाती है। यदि हमारे हृदय में है ये सब ये बीज तो इनको हमें इनका सामना करना पड़ेगा।
मुक्ति तो हमने ये सब ये पाप कार्य या पुण्य कार्य में नहीं है, पाप कार्य या पुण्य कार्य में
नहीं है। भुक्ति भुक्ति तो पाप ही है ना, भोग भी तो पाप ही है ना संसार, या तो हम शास्त्रों के अनुसार कर्म कांड के अनुसार हम भोग करें, लेकिन तरह तरह का पाप है, जैसे निषिद्धाचार है, कुटी नाटी है, जैसे झूठ बोलना, कुटी नाटी में व्यक्ति तो झूठ बोलेगा ही ना, वो भी तो पाप हो गया। ऐसे कितने सी चीजें हैं, जीव हिंसन, ये भी तो पाप है, निराकार ब्रह्म। तो फिर यहाँ क्या कहते हैं महाप्रभु कि जब उपशाखाएं बढ़ने लगती है तो फिर ये उपशाखाएं भी बढ़ जाती है। तो पहले ही तात्पर्य के लाइन में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़ो श्रीकांत सेन प्रभु, तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। 160 श्लोक का तात्पर्य का पहला लाइन पढ़ो।
यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन है तो ये अवांछित लताएं उगाती हैं।
तो फिर कैसे अपराध युक्त श्रवण कीर्तन हम करेंगे तो ये उपशाखाएं बढ़ेंगी। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूसरा लाइन,
मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करें।
ठीक है। अच्छा तो अभी आइए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इन उपशाखाओं के बारे में क्या कहते हैं ये जरा पढ़ें। कोई जोर से पढ़ेंगे उपशाखा।
उपशाखा जो उपशाखाएं भक्ति लता की प्रगति में बाधा है, अतः हमें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इन अवांछित चीजों से बचना है। यदि कोई हरे कृष्ण जपते हुए अपराध करता है तो उपशाखाएं बढ़ेगी। उपशाखाएं हूबहू भक्ति लता बीज जैसे ही प्रतीत होती है, वे एक ही आकार की व प्रजाति की लगती है।
देखने में एक जैसे, ऐसे उपशाखा होती है, पौधा होता है, कौन सा उपशाखा कौन सा पौधा, केवल अनुभवी माली जान सकता है। नया आदमी जाके देखेगा उसको पता नहीं चलेगा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और भी यहाँ बहुत सारे तात्पर्य में प्रभुपाद जी उपशाखाओं की बातें करते हैं, कूटी नाटी के बारे में, सिद्धि लोभी, तरह तरह के गलत दर्शनों के फिलोसफी के साथ अपना अपने अपने आप को जोड़ देना, जैसे श्रीमद् भागवत के आधार पर पैसे कमाने का प्रयास करना, प्रतिष्ठा, एक मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ इत्यादि ये सब करना, या जाति जाति गोसाई के सिद्धांत को समर्थन करना, ये भी एक उपशाखा हो जाता है कि जब तक आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं आपने, तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। तो ये जाति गोसाई के सिद्धांत का समर्थन है, ये भी एक उपशाखा हो जाएगा हमारे हृदय में, ऐसी भावना रखना। अच्छा 161 प्रथम उपशाखा करो ये छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाय वृंदावन, प्रथम मतलब शुरुआत से ही उपशाखार करो ये छेदन। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति भक्त को चाहिए कि जैसे ही वो उसको ऐसी उपशाखाएं दिखाई पड़ती हैं तुरंत उनका छेदन करना चाहिए, उनको काट देना चाहिए, उखाड़ना चाहिए। तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, तब जाके जो हमारे मूल शाखा है अर्थात भक्ति लता है वो बढ़ के वृंदावन की ओर जाएगी। और यदि हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं इन उपशाखाओं के द्वारा तो फिर भगवत धाम जाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो भगवत धाम न जाकर भौतिक सृष्टि में ही रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, और हो सकता है कि वो ऊपरी लोकों में पहुंच जाए, उसका जन्म वहां हो जाए, परंतु वो भौतिक जगत के भीतर ही रहेगा। ठीक है, तो अभी उपशाखाओं का निर्मूलन, इसके बारे में क्या कहते हैं महाप्रभु और प्रभुपाद जी? कौन पढ़ेंगे, जरा जोर से पढ़िए।
उपशाखाओं का निर्मूलन। एक शुद्ध भक्त अत्यंत दक्ष होता है यह भेद करने में कि भक्ति लता कौन सी है व उपशाखा कौन सी। यह भक्त सतर्कता से उपशाखाओं को अलग करता है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो जल का सिंचन उपशाखाओं को पोषित करेगा, अतः मूल भक्ति लता को कुंठित करके।
हाँ, इसीलिए
इसीलिए बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह तुरंत ऐसी उपशाखाओं को काट दे, तभी भक्ति लता अच्छे से बढ़ेगी और श्री कृष्ण के चरण प्राप्त कर लेगी।
पेज 163 में महाप्रभु कहते हैं, 62 में ना, 162।
उखाड़ना यानी कैसे?
समूल,
तो
मूल सहित
कैसे करना, ठीक तरह से श्रवण कीर्तन कर
और पहचानना कि ये कैसे है। ये है उपशाखा, पहले सबसे पहले पहचानना कि ये उपशाखा है, मूल शाखा नहीं है।
मैंने पहचान लिया कि मेरे पास एक उपशाखा है जो तीव्रता से बढ़ रही है।
हाँ, फिर उससे सावधान रहना और उस चीज को नहीं करना। जैसे प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही है, नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं करेंगे। या निषिद्धाचार, जो चार नियमों को भंग करना है, नहीं, अभी नहीं करेंगे भंग।
तो ये उपशाखा जो है बहुत टेम्पटिंग रहता है, ना करना बहुत मुश्किल होता है।
इसीलिए आवरण, तीन प्रकार के आवरण भक्ति लता को घेर लेना चाहिए। कौन से हैं वो तीन प्रकार के आवरण? भक्तों का संग, अभक्तों के संग का त्याग, नियमों का पालन। यदि नियमों के पालन करने में मुश्किल हो रहा है तो बाकी दो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमों के पालन नहीं होने पर अभक्तों का संग बढ़ाएंगे तो नियम पालन निश्चित नहीं हो पाएगा, और यदि नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, अभक्तों का संग त्याग रहे हैं और शुद्ध भक्तों का संग अधिक ले रहे हैं, तो नियमों का पालन करना थोड़ा आसान हो जाएगा या कम से कम कम कठिन हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हमें याद रखने चाहिए, अभक्तों का संग त्याग, शुद्ध भक्तों का सतत संग करना, और तीसरा नियमों का पालन करना। केवल चार नियमों का नहीं, सारे भक्ति के नियमों का पालन करना।
वो दोनों अभक्तों का संग त्याग, भक्तों का संग और बाकी जो नियमों का, तो ये जो भी मतलब चार नियम के अंदर जो भी मतलब तो ऐसे होता है कि
क्योंकि हम सही तरह से नहीं कर रहे हैं। सही तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से हो पाएगा, लेकिन ना हम असत्संग को त्याग पा रहे हैं अच्छी तरह से, और दूसरा ना हम सही संग को, सत्संग को ले रहे हैं उस भावना से जैसे लेना चाहिए। और जो नियमों के पालन की बात आती है वो केवल चार नियमों की बात नहीं है, भक्ति के अन्य जितने भी नियम है, अध्ययन करना, जप करना, कीर्तन करना, ये सब नियम है ना हमारे, तो इन सब का पालन हम अच्छी तरह से करेंगे तो फिर सब ठीक ठाक रहेगा।
तो इसमें क्या है ना, वो तो बहुत कठिन हो जाता है। अभी जैसे अब हम
शनै सब हो जाए,
पढ़ाई कभी ज्यादा कर लेंगे, फिर कभी कभी जैसे कुछ जप ज्यादा कर लेंगे, ये है ही अच्छा पोषण हो जाता है।
नहीं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने तो एक बहुत संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम दिया है ना हम सबको, सुबह से रात तक हमारा समय कैसे जाना चाहिए दिया है ना कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। कार्यक्रम का पालन करना बहुत जरूरी है, श्रवण कीर्तन का सिंचन रोज होना चाहिए। किसी पौधे में हम पानी नहीं डालेंगे, लापरवाही करेंगे तो सूख जाएगा, इसलिए रोज हमारा श्रवण कीर्तन होना चाहिए। और संतुलन की बात है, प्रभुपाद जी ने कार्यक्रम दिया ही है, ये चीजें हमें करनी ही चाहिए।
डिफिनिश कर नहीं पाते
तब, हाँ तब हमारे वरिष्ठ वैश्विक भक्तों के संग में फिर वो पहचाने ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, प्रचार के नाम में सिनेमा देख रहे हो जाने के लिए, सोच रहे हो कि इस प्रचार में काम आएगा, इसलिए क्या हो रहा है, तो कोई हो गए हमको मदद करने के लिए, उखाड़ने के लिए कौन है वो, कम से कम हरे कृष्ण बोल के गया वो, तेरे से बोल रहा था, मजाक से नहीं बोल रहा था, अच्छा है ना, कई बार लोग मजाक से बोलते हैं, अभी ये अच्छे भाव से बोल रहा था, जो भी है
हम किसी न किसी जन्म में ऐसे बोले
हो, हाँ क्या
किसी जन्म में ऐसे बोले
हो, हम भी बोले हैं, अच्छा ठीक है, देख रहे थे, कोई बात नहीं तो क्या बोल रहे थे हम, तो उपशाखा यदि हम पहचान नहीं सकेंगे तो दूसरे लोग बढ़िया पहचानेंगे, चिंता की बात नहीं है, हमारे साथ में रहने वाले लोग एकदम पकड़ लेंगे, इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सुरक्षा है, हमारी गलती जब हम समझ नहीं पाते दूसरे सामने वाला व्यक्ति फटक से पकड़ लेगा है ना, इसीलिए भक्तों का संग हमारे लिए अच्छा है, हालांकि जब दूसरे भक्त हमको बोलते हैं तुम ऐसा क्या करते हो, हमको बुरा लगता है, अरे हमको ही क्यों बोल रहे हो, वो भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, या तो फिर हमारे मन में ये विचार आ सकता है, नहीं नहीं मैंने ऐसे किया था लेकिन इसलिए किया था, ऐसे कारण से किया था, तो हम तरह तरह से उसका कारण देने का प्रयास करते हैं, यदि हमारी भावना सही रही और इस बात को हम सही स्वीकार कर लेंगे तो खट करके वो उखाड़ के हम फेंक सकते हैं, लेकिन हम वो उखाड़ने को जा रहे हैं, हमारी मदद करने जा रहे हैं, हम उपशाखों को पकड़ के रखते हैं, उसको उखाड़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो नहीं निकाल पाएंगे, वो भी तंग होके चले जाएगा, वो जो रहने दो उपशाखा है ना, इसलिए दूसरों की सहायता, इसलिए प्रभुपाद महाप्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्तों का संग ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, शरणागत होना चाहिए अन्य भक्तों के प्रति, किसी भी प्रकार का बाह्य संग हो, बाहर की किताबें ज्यादा पढ़ना, बाहर के लोगों का संग करना, बाहर के वातावरण में रहना, दूसरे का दूसरे का उपशाखा निकालना अपराध है क्या, आप में से कौन उत्तर देंगे,
तुम्हारा भाव क्या,
सही भावना होना चाहिए उनको मदद करने के लिए,
सही तरीके से करना,
सबसे पहली बात हमारा भाव सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए मतलब कि भाव खाना नहीं चाहिए कि मुझे पता है मैं सही हूँ, मैंने सही किया, मैं तुम्हारी गलती को ढूंढ सकता हूँ, भाव क्या चाहिए कि उस भक्त का भला हो, उसकी अच्छाई के लिए, दूसरी बात ऐसा नहीं कि चलो मैं बहुत दिन से रात देख रहा था कि कब ये भक्त गलती करेगा, अब चांस मिला मुझे बताने के लिए कि देखो तुमने ऐसा गलती किया, ये भावना हमारा हुआ सही नहीं, चलो अभी उसका उपशाखा दिखा दो, इतने दिनों से मैं राह देख रहा कब उपशाखा दिखेगा इसका, आज दिखाई पड़ा तो चलो अभी उखाड़ ले, नहीं ये भावना नहीं है, वास्तव में एक दास बन के उसकी हम मदद करना चाहते हैं, ये पहली बात, दूसरी बात हमारा संबंध भी उस भक्त के साथ वैसे होना चाहिए कि वो हमारे उपशाखा को उखाड़ने में सहयोग करेगा, यदि नहीं करेगा तो किसी दूसरे के लिए छोड़ देना चाहिए वो काम, हम नहीं करें तो ही अच्छा है, तीसरी बात है जिस तरह से हम उखाड़ते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। किस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके सामने बोलते हैं, क्या करते हैं हम उस उपशाखा को निकालने के लिए, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, और इस पर निर्भर है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसके साथ में हमारा क्या संबंध है, क्या हम उसके अधिकारी व्यक्ति हैं क्या। परंतु यदि कोई मित्रता की भावना से बोल भी रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये अधिकारी व्यक्ति नहीं है तो मुझे क्यों बोल रहा है। यदि समझ लो कि आश्रम में किसी एक ब्रह्मचारी ने दूसरे ब्रह्मचारी से कहा कि प्रभु देखो ये आपने किया ऐसा ठीक नहीं किया, ये तुम तो मेरे अथॉरिटी नहीं हो तो तुम कैसे बोल सकते मुझे, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आखिर कुछ गलती हमारे बता रहे तो हमें हमारे ऊपर वो सेवा कर रहा है ना, हमारे लिए हमारी मदद कर रहा है ना, तो हमें ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए कि तुम क्यों मुझे बोल रहे हो, तुम कौन होते हो मुझे बोलने के लिए, तुम मेरे अधिकारी व्यक्ति नहीं हो। तो हमें यदि कोई ऐसे बोले कि ये गलती है तो हमें सोच लेना चाहिए, भले वो हमारा अधिकारी व्यक्ति हो या न हो, भले वो कोई बाहर का अभक्त भी हो, भले अजनबी हो, बिल्कुल स्ट्रेंजर। कई बार ऐसे होता है, बहुत लोगों से हम सीखते हैं, अजनबी लोगों से सीख जाते हैं, कोई ट्रेड मिलता है, कोई फट करके कुछ कह देता है, फिर हम सीख जाते हैं हाँ इसने ये सही बात पकड़ी हमारी। तो ये सब चीजें हैं, तभी हमें सोच विचार करके करना चाहिए, और दूसरों की उपशाखा निकालने में आनंद नहीं लेना चाहिए हमको।
जो हमारे अंदर ऑलरेडी है शाखा उपशाखा दोनों है, फिर भी हम दूसरे का ऐसा सोचेंगे हमारे,
इसलिए डिपेंड करता है। यदि उस भक्त के लिए अच्छा होगा कि वो उपशाखा निकाल दे, यदि सामने से दिख रहा है, और यदि हमारा स्थान है, हमारा संबंध उसके साथ ऐसे है, तो हम कर सकते हैं। परंतु यदि वो कार इतना छोटा है कि बार बार बोलना भी नहीं है तो ठीक है, रहने दो। या तो फिर बड़ा भी है वो दोष तो हमारे से नहीं होगा, तो जो एक अधिकारी व्यक्ति है जिनकी बात वो व्यक्ति मानेगा उन तक हम बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन सही भावना से, फिर वो कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हम भी कर सकते हैं, मित्रता की भावना हो तो, विश्वास और प्रेम हो तो किया जा सकता है। हम सेवा कर रहे हैं उस भक्त की, इस भावना से करना चाहिए। और हम जब करते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि दूसरे भक्त जब हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारी उपशाखा है, हम उसकी उपशाखा उखाड़ते हैं तो दर्द होता है ना उसको, तो हमारी उपशाखा कोई उखाड़ता है तो हमें दर्द होता है, उस समय हमें सहन कर लेना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि ये तुम मेरी उपशाखा क्यों निकाल रहे हैं। है ना, इनको हम बहुत सावधानी से रखना चाहता हूँ मैं, अच्छे हैं हृदय में। थोड़ा जोर से बोलो।
अभी आपने बताया कि उतना विश्वास और संबंध होना,
जानते हो ना आप, संबंध में जान ही लेते हो ना, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई अणुविज्ञान नहीं है, साधारण सी बात है। हम भक्तों के साथ पता चलता है ना किसका कितना प्रेम किसके साथ में है, नहीं है संशय कहाँ किसका है क्या है, पता चलता है ना। हाँ,
किसका प्रेम, दूसरे के प्रति उसको भक्ति में बाधा हो तभी।
अब माता जी हो तो गड़बड़ है फिर। कोई ब्रह्मचारी है, माता जी नहीं है,
लेकिन डिस्टर्ब
नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। नहीं कि कोई एक भक्त दूसरे से साधारण प्रेम करता है जैसे भक्तों के बीच में होना चाहिए, तो वैसे वो प्रेम करेगा तो बाधा क्यों आएगा उसमें।
प्रेम का मतलब क्या
है, प्रेम का मतलब है कि उसके हित के लिए कार्य करना,
लेकिन हिंसा तो नहीं,
हिंसा नहीं करना, लेकिन उसके प्रेम के लिए ही उसके उसके हित के लिए ही कार्य करना।
लेकिन जो जो हित के लिए कार्य वो लोग उसको हिंसा लग रहा है। अभी कैसा प्राण है, एक प्राण को हम उसके साथ में खेलते हैं प्रेम से, लेकिन उसको बहुत
इसीलिए हम बोल रहे थे कि उपशाखा किसी का भी उखाड़ना हो तो दर्द होता है। इसलिए जो उपशाखा जिसकी उपशाखा निकाल रहे हैं उसको हमारे द्वारा उपशाखा निकलवाने के लिए तैयार होना चाहिए।
लेकिन उपशाखा तो बात नहीं है, निकालने का रखने का ये
फिर क्या समस्या है?
अभी प्रेम है,
कोई भक्त उसका हमारे प्रति प्रेम बहुत ज्यादा व्यक्त करता है तो हमको चिड़चिड़ाहट होती है, यही है ना, यही बात है ना। तो फिर दूसरा भक्त कम कर देगा, उनको बताओ इतना प्रेम मत करो। हो गया ना बात बस। ठीक है, फिर आगे महाप्रभु कहते हैं 162 में, प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाय। प्रेम फल पाकी, जब कृष्ण प्रेम का फल जो कि भक्ति लता के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रकट होता है, जब वो पक जाता है वो फल, फिर माली आस्वादय, फिर वो जो माली है वो उस फल का आस्वादन करता है। फल कहाँ है? गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों में। माली कहाँ है? गोकुल धाम में। परंतु वो फल को चख सकता है, तो जब वो फल चख जाता है पक जाता है तो यहाँ बैठा हुआ माली दिव्य माली उसको चख रहा है, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के दिव्य अनुभव को का स्वाद ले रहा है। बहुत आनंद आता है कृष्ण प्रेम में। लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए, तो भक्ति लता का बढ़ते हुए भक्ति लता का लाभ लेकर वो श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाता है जो कि कल्प वृक्ष के समान है। फिर आगे चल के वो भी भक्ति लता के ऊपर चल के कृष्ण के पास चले जाता है जब शरीर का अंत हो जाता है तो। ठीक है, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। फिर ताहा से कल्प वृक्ष करो ये सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। ताहा कहा? वहां गोलोक वृंदावन में। कब? मृत्यु के बाद। पहले क्या था, वो यहीं पे फल को चख रहा था, यहाँ बेलगाम में रह के वहां के फल को चख रहा था। फिर समय आता है ना शरीर त्यागने के लिए, उस समय लता अवलंबी तो इस भक्ति लता का लाभ लेकर क्या करता है, मालिक कल्प वृक्ष पाए, फिर वो स्वयं पहुंच जाता है श्री कृष्ण के चरण कमलों में। अर्थात मृत्यु के बाद भक्त कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन जाएगा कृष्ण के पास, और वहां जाके तहां फिर वो क्या करता है, सही कल्प वृक्षेर करोय सेवन, वही जो कल्प वृक्ष है, कौन सा कल्प वृक्ष है? कृष्ण के चरण कमल, उनकी सेवा करता है। सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, फिर बड़े सुख में उस प्रेम फल के रस का वो आस्वादन करने लगता है कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते करते। तो कृष्ण की सेवा का, चरण कमलों की सेवा, ये बहुत मीठा होता है, तो निरंतर वो स्वाद ऐसे लेता रहता है। यही एत परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ यही तो मतलब ये परम फल ये जो इस फल का आस्वादन करना कृष्ण की सेवा करते करते ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अर्थात ध्येय जीवन का परम पुरुषार्थ। साधारण वैदिक शास्त्रों में चार पुरुषार्थों की बातें की गई है। कौन से हैं वो चार पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भक्ति क्या है? पंचम पुरुषार्थ। ये पांचवा पुरुषार्थ है और परम पुरुषार्थ है सबसे ऊंचा ध्येय मनुष्यों के लिए। तो यही तो परम फल सबसे श्रेष्ठ फल और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, जिनके सामने अन्य जो चार पुरुषार्थ हैं या ध्येय हैं वो घास के समान है, तृण तुल्य है, अर्थात कुछ भी नहीं, तुच्छ है कृष्ण प्रेम के सामने। और फिर महाप्रभु कहते हैं एक श्लोक के द्वारा कि जब तक कि इस कृष्ण प्रेम का गंध तनिक भी किसी व्यक्ति के हृदय में प्रकट नहीं होता है, जो कि एक ऐसी दिव्य औषधि है जो कि श्री कृष्ण को हृदय में नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है, तब तक ये सारे भौतिक ऐश्वर्य हैं जैसे कि सिद्धियां और ब्राह्मणों के जो गुण हैं जैसे कि सत्य शांत तितिक्षा इत्यादि, योगियों की समाधि की अवस्था और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना इत्यादि, ये सारी चीजें बहुत चमत्कार जैसे लगेंगे लोगों को। वाह 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 करेंगे लोग, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इन सारे चीजों को हम अच्छे कब तक समझेंगे? जब तक कि कृष्ण प्रेम का लेश मात्र भी गंध हमारे हृदय में प्रकट न हुआ हो। दूसरे शब्दों में, जब कृष्ण प्रेम का लेश मात्र भी गंध प्रकट हो जाए तब तत्क्षण हम इन समस्त चीजों को तुच्छ मानने लगेंगे कि इनका कोई मूल्य नहीं है, इनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे। तो यहाँ कौन सा जीवन की सर्वोच्च पूर्णता, कोई पढ़े?
अंततः यह भक्ति लता कृष्ण प्रेम का मधुर फल देती है और इसका आस्वादन कर भक्त शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। गोलोक वृंदावन में इस भक्ति का आस्वादन करना ही जीवन का सर्वोच्च पूर्णता है।
इसके बाद है
धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही उपशाखा है।
ये हमारे लिए उपशाखाएं हो सकती है। ये धर्म मतलब किस तरह का धर्म? जो भौतिकता वादी धर्म है, मतलब जो भौतिक इच्छा के लिए किया जाता है, कर्म कांड आदि सकाम जो धर्म है उसको। हाँ आगे।
कर्मी ज्ञानी या योगियों की उपलब्धियां भक्ति के समक्ष नगण्य है। भक्तिमय सेवा इतनी महान है कि वह भगवान श्री कृष्ण को भी नियंत्रित करती है।
और अन्य जितने भी पथ हैं भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो शुद्ध कृष्ण प्रेम की महिमा ये है, सबसे बड़ी महिमा ये है कि वो श्री कृष्ण को भी नियंत्रित कर सकती है। पर अन्य कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक कार्य या पद्धति ऐसे श्री कृष्ण को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए कृष्ण प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या अभी समय क्या हुआ? 4:10 हो गए। अच्छा ठीक, तो यही समाप्त करें फिर। हाँ, क्योंकि अभी सबको धन्यवाद देंगे, गोकुल धाम के डिवोटीज हैं और जिन्होंने सेवा किया है ना, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे। तो वैसे आपको याद होगा कि रूप शिक्षा में अनेक विषय थे। पहला विषय कौन सा था? हाँ, भक्त बहुत बिरला होता है। शुद्ध भक्तों, कृष्ण भक्त को पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ होते हैं। दूसरा विषय
भक्ति लता,
ये दूसरा विषय था। तीसरा विषय कौन सा था? नहीं, अभी होना है। शुद्ध भक्ति के लक्षण, इसमें महाप्रभु केवल थोड़े बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, जैसे अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक है, सर्वोपाधि निर्मुक्तम श्लोक है, और कपिल देव की जो प्रार्थनाएं हैं वो हैं, मद्गुणश्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय इत्यादि, ऐसे सब श्लोक बोलते हैं। और कल इसकी बात हो रही थी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रिदि वर्तते, वो श्लोक सब। और ये लगभग 6-7 श्लोकों में है, 6-8 श्लोकों में। उसके बाद फिर जिन भावनाओं में भक्त भगवान से प्रेम करता है, उसकी आसक्ति होती है, 5 रस आदि, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हम कथा यहीं विराम करते हैं, और कभी अवसर मिले तो इस विषय को यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप याद रखिए कि कहाँ हम रुके थे इस कथा में, ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए और इतने उत्साह से आपने इसमें इस 3 दिवसीय ब्रह्मचारी सत्संग में आप शामिल हुए, और थोड़े कष्ट भी हुए होंगे आपको, क्योंकि अपना स्थान बदल के आना, दूसरे स्थान में रहना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबको धन्यवाद देने हैं ना, खास करके गोकुल धाम के भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहिए। हाँ
हरे कृष्ण, बड़ा लिस्ट है, धन्यवाद देना चाहेंगे। योजना जो भी बनाई, स्रोत सबके पीछे प्रेरणा है, परम पूज्य भक्ति समझते हमारे, तो महाराज की प्रेरणा से हम यहाँ ये सब कर पाए, तो पहले हम महाराज को धन्यवाद देते हैं। और यात्रा के पहले दिन हम सब चर्चा कर रहे थे, कहाँ भक्तों को कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसा, तो उस समय माधु से भी चर्चा किया, तो माधु प्रभु आके जगह को देखे, फिर ये जगह गौशाला जैसा ही था, अभी जैसा है वैसा नहीं था, गौशाला जिसमें गायों को बांधते हैं, सुंदरी रोज आके यहाँ रहती थी, तो ऐसा था। फिर बाद में हमने बोला उनको कि यहाँ भक्त रहेंगे, तो प्रभु जी बोले जब भी अतिथि आते हैं उनको प्रसन्न करना चाहिए ताकि वो आशीर्वाद दे, अगर अतिथि आते हैं और हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो शाप मिलता है, जिसकी वजह से हमारे भक्ति में बाधा होगी। तो तुरंत एक ही दिन में सब उछल पुछल करके सब इसको तैयार किया, तो माधव प्रभु ने हमें बहुत प्रेरणा दिया सब सेवाओं को ठीक ठाक सिस्टमेटिकली करने के लिए, तो हम माधव प्रभु से भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम के लिए योजना बनाएं, फिर क्या क्या आवश्यकताएं हैं सब चीज़ों की, बहुत सारे चीज़ अलग अलग जगह से लाए गए, तो सब प्लानिंग करके वो लिस्ट वगैरह बना के यहाँ से निकले हमारे हरिराम प्रभु बेलगम के लिए, सब वहाँ जाके बेलगम मैनेजमेंट भक्तों से, खास करके श्रीमान नागेंद्र प्रभु, श्रीमान भद्रसेन प्रभु, श्रीमान श्रीजी पंडित प्रभु, श्रीमान गोविंद दत्त प्रभु, इनसे तालाब किए, फिर चीज़ों को हम कैसे ला सकते हैं, कैसा सुविधाएं बना सकते हैं, वो सब चर्चा की, तो हम बेलगम के मैनेजमेंट को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और तीनों दिन भक्त तीनों समय अच्छा प्रसाद पा रहे थे, तो श्रीवत्स प्रभु और उनके टीम जिसमें बेलगम से माली प्रभु
अरे वो है क्या कोई उनमें से कहाँ है सब लोग वो टीम का उनको बुलाओ ना थोड़ी देर उनको होना इधर जरूरी है तो उनको धन्यवाद उस समय देना जब वो आएंगे जो भी भक्त लोग है सबको बुलाओ जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी सेवा किया होगा इसके लिए शिविर के लिए उन सबको बुलाओ
और जब योजना हो गई करेंगे लेकिन जब भी कोई यात्री ऐसे गोकुलधाम में आना चाहते हैं तो हम उनको पहले ही बोलते हैं कि यहाँ पानी की थोड़ी असुविधा है तो कृपया इतनी संख्या में मत आइए तो 5-6 भक्त आ सकते हैं हम उनको सब सुविधा दे सकते हैं लेकिन जब इतने भक्तों की योजना बनाई तो हम चिंतित हो गए अभी पानी का कैसा करेंगे तो बाद में सभी भक्त बेलगम में मिलके हरिरामपुर वगैरह योजना बनाई कि अभी हम टैंकर मंगाएंगे और इसके लिए नियोजित किया गया श्री राममूर्ति श्रीमान श्री राममूर्ति हालांकि इनको नियोजित किया गया लेकिन सभी भक्त मिलके इसमें कार्य किया हरे राम प्रभु समस्त वैष्णव प्रभु और राममूर्ति प्रभु सबके लिए अच्छा पानी का सुविधा बनाया टैंकर को मंगाया सही समय पे सबको पानी मिल गया तो हम श्रीमान राममूर्ति प्रभु और अन्य भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहते और जब भी शहर से भक्त यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा आश्चर्य लगता है कि यहाँ का बाथरूम थोड़ा अलग है क्योंकि पहले आने से पहले हमने बेलगम में घोषणा की थी आपका टूथपेस्ट नहीं लाना है आपका साबुन नहीं लाना है आपका डिटर्जेंट पाउडर नहीं लाना है जब ये सभी भक्तों ने सुना तो वो बोले कोई दूसरा जगह है क्या जहाँ पे कैंप कर सकते तो फिर भी ये सब चीज़ों को सभी बेलगम में रखकर यहाँ पे आए और हमारी बाथरूम में जो सुविधाएं हैं उसका लाभ दिया और टॉयलेट भी बहुत अजीब सा है जाने का फिर कुछ कुछ करने का फिर घुमाने का तो बहुत भक्तों ने इसको पहली बार अपने जीवन में ट्रायल भी ले लिया तो और हमेशा के लिए वहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए पानी का सुविधा था और बाथरूम में हमेशा गर्म पानी था जब भी भक्त स्नान के लिए जाते थे गर्म पानी उपलब्ध था तो ये सभी सेवा पानी गर्म करना बाथरूम टॉयलेट को स्वच्छ रखना उनको मेंटेन करना श्रीमान सागर प्रभु ने किया तो हम
कहाँ है सागर अरे वो
और जब भी ऐसा योजना होता है तो रहने का भी सुविधा करना चाहिए ताकि जब चाहिए तब उनको सही चीज सही समय पे दिखे क्योंकि यहाँ शाम होते ही सूरज डूब जाते हैं फिर लाइट्स जलाने के लिए बटन्स नहीं है तो समस्त वैष्णव प्रभु ने हर जगह पे अच्छी तरह लाइट लैंप्स दीप जलाकर सब भक्तों को बहुत सुविधा बनाया ताकि वो अपने बिस्तर देके अपने कपड़े देके अपने गमछे देके रास्ता देके तो समस्त वैष्णव प्रभु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है प्रसाद लेना तो तीनों समय हम अच्छी प्रसाद पाते थे अच्छी जगह पे जहाँ पे पूरा स्वच्छ हो रात को भी सही समय पे उधर बहुत सारे दीप जले रहते थे और हमेशा के लिए सर्विंग के लिए भी तैयार थे तो ये सब सुविधा बनाए थे श्रीमान वसुदेव कृष्ण प्रभु और जब कोई अतिथि आते हैं तो पूछते हैं एक नंबर कहाँ जाना है तो थोड़ा हमारा मुख को थोड़ा अलग सा ये बनाते हैं एक नंबर ऐसा करते हैं फिर बोलते हैं थोड़ा उधर जाना तो बात आई अभी इतने सारे भक्त आ रहे हैं तो हम थोड़ी बोल सकते कि ठीक है उधर जाओ इधर जाओ तो तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ा तो जब रुक्मिणी रमन प्रभु को कहा गया तो एक घंटे के अंदर उन्होंने 4 एयरगन खड़ा कर दिया तो हम रुक्मिणी रमन प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहते वो टॉयलेट खड़ा करने और जब माधव प्रभु ने कहा कि अतिथियों का अच्छा सत्कार करना चाहिए, तो उसी दिन हरिरामपुर अन्य भक्तों के साथ मिलकर योजना बनाया, कल सुबह 6:30 बजे हम लग जाएंगे इसको सेटअप करने के लिए। इसको चूना मारा, फिर सब जमीन को लेवल किया, तो बहुत सारे भक्तों की योगदान है इसमें। श्रीमान हरिराम प्रभु, श्रीमान रुक्मिणी राम प्रभु, श्रीमान समस्त वैष्णव प्रभु, श्रीमान सागर प्रभु, श्रीमान सुरेश प्रभु, महेश प्रभु, ज्ञानेश्वर प्रभु, गुरुदास प्रभु और अन्य चिकला के भक्तगण कामगार जो भी ये हॉल को रेडी करने में मदद किया है, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और जब टैंकर आया तो हमारा टैंक खाली करना चाहिए था ताकि उसका पानी उसमें हम भर सके। तो हम जब टैंक बना रहे थे तो हम जो कैलकुलेशन पेपर पे किया था वो 6,500 का था, दोनों टैंक मिलाकर बाहर का और अंदर का। जब 4,000 लीटर का टैंकर आया तो 4,000 लीटर ही नहीं बैठ पाया, तो हम चिंतित हो गए। हमने तो बनाया था 6,500 का और 4,000 लीटर भी पानी नहीं बैठ रहा है। तो बाद में कैलकुलेशन वगैरह करके देखा, कंस्ट्रक्शन करते समय हमने जो डायमेंशन पेपर पे लिखा था वैसा बना नहीं, तो कुछ कमी हुआ है। तो केवल 3,900 लीटर बैठने का कैपेसिटी था। तो वो टैंक को भी साफ सफाई करना और जो एक्स्ट्रा पानी था उसको कैसे एडजस्ट करना, कहाँ डालना, वो सब योजना श्रीमान हरिराम प्रभु, श्रीमान समस्त वैष्णव प्रभु और अन्य बेटना के छोटे छोटे भक्तगण इसमें भाग लिए टैंक को स्वच्छ करने के लिए। तो हम इन सब भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं।
हरी बो, हरी बो, हरी बो।
और मंदिर को सजाना था और मंदिर में अच्छा रंगोली वगैरह गोबर लगाना है झाड़ू मार के, तो उसके लिए बेलगम से एक टीम है। जब हमारी गाय यमुना करके गाय थी यहाँ पे 2012 में वो अपना शरीर त्याग दिया, तो उस समय हम सोच ही रहे थे कि बारिश का सीजन जैसा था मौसम, तो अभी कुछ ही भक्त थे, गाय तो बहुत वजन होता है, उसको बारिश की इसमें कैसे खींचेंगे कैसे करेंगे। तो भगवान ने उस दिन वड़गांव के कुछ भक्तों को भेज दिया, 12-13 भक्त एक मारुति वैन लेके आए थे, ओमनी वैन, उन्होंने इधर आए, फिर हमने उनको सेवा में लगा दिया। चलो अभी गाय शरीर त्याग दिया है, अभी गाय का अंतिम क्रिया करते हैं। तो उन्होंने इतना उत्साह किया, उत्साह से वो सेवा किया कि उनको इतना प्रेरणा मिला कि उसके बाद वो बार बार आने लगे इधर सेवा करने के लिए। तो हमने उनको नामे रख दिया वड़गांव टीम। तो जब भी कुछ हेवी सेवा करना होता है या कुछ भी साफ सफाई करना होता है, डेकोरेशन वगैरह करना होता है, तो बोल देते हैं वड़गांव टीम को कि कृपया आ जाइए, कुछ मदद चाहिए। तो टेम्पल हॉल डेकोरेशन के लिए ऐसा ही उसमें से एक भक्त है पवन करके, उनका फैमिली को बुलाया था जो नित्यानंद त्रयोदशी को यहाँ आकर पूरा मंदिर को सजाया था। तो उन्होंने बोला था कि गौर पूर्णिमा को भी आएंगे, लेकिन बीच में ही हमने बोला उनको कि आप आ जाइए। तो पवन प्रभु और उनका फैमिली आकर पूरा रंगोली वगैरह डाल के पूरा मंदिर को सजाया था, तो हम वो परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहुत सारे भक्त आमटे से आए थे और अन्य अन्य सेवाओं में हमें मदद किया है, बहुत सारे सेवा है जैसे साफ सफाई करना, गोबर लगाना। खास करके इन भक्तों का परिवार आए थे, जनार्दन प्रभु, डाकू प्रभु, हनुमंत प्रभु, विट्ठल प्रभु, संभाजी प्रभु, तो इन सब भक्तों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
हरी हो, हरी हो।
और खास करके बेलगम से सेवा करने के लिए एक भक्त आए थे उमेश प्रभु, तो उन्होंने भी हमें किचन में बहुत मदद किया, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बेंगलोर से बेलगम आए, फिर बेलगम से। और दीपक प्रभु और अंजनानंद प्रभु ने भी किचन में बहुत मदद किया, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम सब सुविधा ले ही रहे थे, आते थे गर्म पानी है, ठंडा पानी मिलाओ नहाओ, लेकिन जो पानी जा रहा है उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा रोज सिर्फ 2 बैरल पानी जाता है मैक्सिमम 400 लीटर, लेकिन जब इतने सारे भक्त आ गए तो बहुत पानी जा रहा है, अभी उसका कैसे करना क्या करना। तो सही समय पर हरिराम प्रभु, सुरेश प्रभु बकेट्स लेके भाग जाते थे सब भक्तों को लेकर, तुरंत पानी को लताओं को डालने के लिए
उपशाखा
को भी डाल दिया होगा। तो हरिराम प्रभु, रुक्मिणी रमन प्रभु, सुरेश प्रभु और कारवार के भक्तगण और अन्य बेलगम के भक्त भी जो भी इसमें सेवा की है, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहुत सारे भक्तों ने अन्य सेवाओं में हमें सुविधा करके दिया ताकि हम कार्यक्रम को सही समय पे सब मिलके करें। गोपाल भट्ट प्रभु, मुख्य यादव प्रभु, अंजानंद प्रभु, इन्होंने आल्टर में सेवा किया, सही समय पे भोग लगाया, आरती किया ताकि हम सब अपने कार्यक्रमों को सही समय पे करें। हम इनको भी धन्यवाद दिया। सोमवार को नागरिकों ने भी अभिषेक करने में मदद किया तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते। और बहुत जब हम आंदोलन में आते हैं, बाहर तो ठंडा पानी पीते रहते हैं, लेकिन जब हम आंदोलन में आ जाते हैं तो गर्म, कुछ भक्त कहते हैं गर्म पानी भी पीना चाहिए, तो गर्म पानी पीने का भी हमें आदत हो जाता है। तो यहाँ पे भी गर्म पानी का सुविधा, किचन में गर्म करना, फिर वहाँ से यहाँ आकर उसको लाना, आना डालना, सही समय पे कुछ उसको स्टिकर लगाया था गर्म पानी करके, कोई भक्त ने लिखा था अभी ठंडा है। तो वो नोटिस को भी याद रखते हुए हमने फिर भक्तों को कहा कि हमेशा के लिए कंटिन्यूस गर्म ही। तो दीपक प्रभु, सुरेश प्रभु, महेश प्रभु, समस्तेश्वर प्रभु, जो भी ये गर्म पानी ठंडा पानी का सेवा किया, हम इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते। और सही समय पे प्रसाद रेडी करते थे, और प्रसाद रेडी करने में इतने सारे कष्ट है क्योंकि सुविधा इतना यहाँ नहीं है, बटन दबाने से वो मिक्सर में पाउडर नहीं बनता या पेस्ट नहीं बनता, तो माली प्रभु कूटनी में कूटते बैठते थे, शिवानंद प्रभु कूटनी में कूटते बैठते थे। और यहाँ पे बर्तन धोना, सब्जी कटिंग करना, एक एक कोने में बैठ के करते थे अंधेरे में। तो सुशांत प्रभु है, और मोहन प्रभु, और बसवराज प्रभु, और बबन प्रभु, जो श्रीवत्स प्रभु, तो श्रीवत्स प्रभु के अध्यक्षता में ये पूरा टीम, अमृत कृष्ण प्रभु, ये सभी मिलकर बहुत अच्छा प्लानिंग करके सही मेनू बना के सब भक्तों को बहुत प्रसन्न किया, हमें बहुत डेलिशियस और सम्पूर्ण प्रसाद दिया। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये पूरा जो भी मैं कहा, इसके पीछे जो भी योजना बनाना, फिर देखना कि हर चीज सही समय पे हो रहा है, हर कोई भक्त अपना अपना सेवा कर रहा है, ये सब चीज देख रहे थे श्रीमान हरिराम प्रभु। और आप सब भक्तों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप सब सही समय पे आकर सभी कक्षाओं को सही समय पे आरंभ करने में बहुत मदद किया, जिससे हमें बहुत कुछ श्रवण करने को मिला, और आशा करते हैं कि ये जो भी श्रवण किया है हम अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनने वालों, हरे कृष्णा, हरि बोल। और कोई रह तो नहीं गए ना, बोलो।
मुझे ये वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए अवकाश दिया तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वदर्शन को ने किचन के लिए पांचल पंप घुमाया सुबह 6 बजे। राम लक्ष्मण और सर्वदर्शन प्रभु की टीम को भी हम
और गायों का सेवा किया माधव चेतन प्रभु, रामदास प्रभु ने। हमको टूर में ले गए, जमीन में दिखाया।
क्षमा कीजिए अगर किसी वक्त का हम नाम लिया। और हमें बहुत मदद किया किचन में श्रीमान आलोक प्रभु, सही समय पे
केक खिलाए सब।
तो कुछ भक्तों को हम यहाँ अभिवादन करने के लिए बुलाना चाहते थे। हाँ
हाँ।
तो अभिवादन कुछ भक्तों को अभिवादन करने के लिए श्रीजुक ने आग्रह तो श्रीमान नागेंद्र को
साक्षात्कार क्या क्या हुआ आपको, क्या लगा अनुभव, कैसे हुआ अभी क्या?
हम श्रीमान ब्रजेश्वर प्रभु का भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि माधव प्रभु का सेवा करते करते भी उन्होंने सब कुछ हरिराम प्रभु के साथ मिलकर प्लानिंग करना मैनेजमेंट केक बनाना सबके लिए केक बना के दो तीन बार खिलाया उनका मदद गोलोक प्रभु ने सॉरी तो इसलिए हरिराम प्रभु और ब्रजेश्वर प्रभु के बिना ये यहाँ पे जो भी सुविधाएं होती थी वो होना मुश्किल था इसलिए हरि ब्रजेश्वर प्रभु का भी हम हरि बोल बोलकर
और कल जिन्होंने ड्रामा किया सब भक्तों को भी बहुत धन्यवाद हरि
कहने के लिए शब्द बहुत कम है क्योंकि हम जब यात्रा के लिए यहाँ आने का सोचा तो जगह ढूंढने लगे थे और फर्स्ट तो ये था प्रपोजल मतलब ये था कुडाल जाएंगे कि कुडाल में सुविधा ज्यादा था और थोड़ा तैरने की दृष्टि से किचन की दृष्टि से बैठने की व्यवस्था से फिर इस तरह से रहने फिर ऐसे फिर तीन चार जगह सोच रहे थे लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के डिवोटीज कैसे आ पाएंगे लेकिन पिछली बार भी हम लोग यहाँ के डिवोटीज को भी बुलाने के लिए सोचा लेकिन कुछ लोग आ पाए और दूसरा था कि यहाँ पे बार बार लास्ट दिन लास्ट दो दिन तक भी था कि जाना नहीं जाना जाना नहीं जाना सोचो वहां पर पानी नहीं होगा ऐसे ऐसे चल ही रहा था डिस्कशन चर्चा हो ही रहा था तो लेकिन फिर हम लोगों ने फिर उनसे पूछा पंचल दो बार नहीं तीन बार नहीं घुमा सकते क्या उन्होंने एक ही बार घूमता है वो उससे ज्यादा पानी मैक्सिमम दो बार घूमता है उसके बाद पानी खत्म हो जाता है तो ऐसे जब वो बोल ही रहे थे तो हमने सोचा काफी बार गए नहीं और फिर ऐसे कुछ सोचा कि टैंकर आ जाएगा क्योंकि माधव चैतन्य प्रभु वहाँ गाय के लिए भी टैंकर मंगवाने को प्लान कर ही रहे थे पीने के पानी के लिए वो सब प्लान कर रहे यहाँ तक पहुँचने तक भी यही था कि कैसे होगा एक तो पानी और दूसरा प्रसाद और प्रसाद अगर बनने में लोग लग जाएंगे तो फिर हमारा क्लास में इतना ये नहीं हो पाएगा मतलब अटेंडेंस नहीं हो पाएगा ऐसा सोचा लेकिन जब यहाँ आके दोपहर तक जब सब लोग टिक गए तब विश्वास हुआ कि ये कुडाल से भी बढ़िया लगा कुडाल में सुविधा तो था लेकिन ये वातावरण नहीं था भक्ति में वातावरण कुडाल में क्या केवल कमरे ठीक है लेकिन भक्ति में वातावरण यहाँ भले ही कमरे की सुविधा वहां जैसे हर ब्रह्मचर्य को एक एक कमरा मिला ये दो डिवोटीज को और अटैच मतलब जो साथ में टॉयलेट बाथरूम में था लेकिन यहाँ पे सबको दो ही टॉयलेट और एक ही बाथरूम मिलने पर भी सब संतुष्ट थे या तो मतलब मैं तो संतुष्ट था मैं तो संतुष्ट था और जहां तक रात को मतलब प्रकाश वगैरह वहां पर ज्यादा प्रकाश था और तारे देख नहीं पाए हम लोग यहाँ पे सब दिया वगैरह लगा था और जल्दी सो के सोना वाला ठीक 6:30 बजे 7:15 तक सभी प्राय उठ ही जाते थे और गर्म पानी तो और 24 घंटा वहां पर भी नहीं था मतलब वास्तविक सुविधा यहाँ ज्यादा था उससे भी लेकिन थोड़ा बहुत गद्दा पानी को ऐसे मानसिकता ऐसे बना थे कि सुविधा ज्यादा था और सोच रहे थे हम लोग कहीं नाले में जाके बैठेंगे क्लास के लिए ऐसे कुछ कुछ था ऐसे विचार परंतु यहाँ आने से फिर बहुत और श्रावण कीर्तन तो अच्छा हुआ और नाटक भी बढ़िया था कल का भी और प्रसाद एक से मतलब वहां प्रसाद हम लोगों ने सोचा कि वैसा प्रसाद कभी होगा ही नहीं ऐसे वहां हम लोग जहाँ वहां जाकर आए थे यहाँ उससे भी बढ़िया प्रसाद हुआ और तीनों वक्त स्वीट मिला तो स्वीट या मतलब जो भी मतलब कमियां ऐसा कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं और विषय भी मतलब अच्छा था मतलब शब्द और जितना बोले वो कम है इसलिए हम मैं सोचता हूँ कि बार बार हम ऐसे कैंप को गोकुल्ला में भी कर सकते हैं।
हरी राम प्रभु।
के सामने बोलने के लिए डर जब हम प्लान किया इधर यात्रा करेंगे ऐसा सब कुछ रेडी है क्या, मैं बोला रेडी है क्या रेडी करना, तो बोला आप लोग फिर क्या करेंगे, मैं बोला आप लोग हम लोग ऐसा मत बोलिए, हम सब लोग बोलिए, ये आपका हमारा नहीं है। तो फिर सब लोग तीनों लोग चर्चा शुरू किया, फिर बाद में मैं इतना बड़ा लिस्ट लिखा था, फिर गोविंद प्रभु ने बोला फिर आप क्या करेंगे। ये पंडित प्रभु तो बहुत मेरा साथ जोक करते हुए बोल रहा था, मुझे इतना सब तो कैंसिल ही कर देंगे। फिर नागेंद्र प्रभु ने बोला नहीं, ये हम लोग सभी मिले, आप लोग को भी सब लोग को इधर क्लास मिलता है, तो इसलिए भी बहुत सारे जगह में पूरा रहने के लिए फुल प्रसाद के लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया था, तो हम उसके लिए बहुत धन्यवाद है। जब फ्रैंकली स्पीकिंग अवर हृदय, जब हम लोग ऐसा जगह में जब हम सोते हैं एक दिन के बाद दूसरा दिन नहीं सोते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा 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 सब कुछ है, ऊपर काली जमकाना डाला है मगर नीचे पूरा ऐसा। ऊपर जब मैं बैठा था उधर मुझे लग रहा था मैं सोच रहा था ये लोग जो है एकदम लेवल लैंड पे, और वो भी ये दो रात इधर रहना है और क्लास में भी बैठना है, तो सत्यम और भी एक्चुअली हम लोग को महाराज ने और भक्तों ने सभी फैसिलिटीज दिया था, ऐसा नहीं है नहीं दिया था, हम लोग को पहले भी पता था आप लोग आ रहे, तो खाली हमारा आलसीपन उतना ही ताकि हम लोग इसको कुछ दो तीन दिन का काम था, तो सभी भक्त लोग बोलने लगा खाली तीन दिन हम लोग इसको खड़ा होके कर सकते थे, मगर हम लोग सोचते थे बड़गाम डिवोटी से ना हमारा ही लोग है ना, इतना क्यों ये करना है। जब फाइनल डे आया था, फाइनल डे में माधव प्रभु बोला आप लोग को गेस्ट लोग को सॉरी अतिथियों को केयर में करना नहीं आता है, आप लोग बुलाओ ही मत इधर, आप लोग ऐसा करते हैं, तो बाद में कुछ तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रेडी कर दिया। तो इसलिए इस तीसरा हम इधर का भक्त लोग जो भी था हम लोग उसको तीन दिन बहुत खींचाता नहीं किया, ऑलरेडी वो पर कितना स्ट्रेच करना है उतना स्ट्रेच में ही सब लोग रहते हैं, तो हम लोग ये जो यात्रा के लिए उनको और खींचा था, तो फिर भी वो लोग उसका साथ साथ में कभी भी सुबह हो शाम में हो, मैं इधर आके देख रहा था गर्म पानी, फिर किचन में जाते समय में एग्जैक्टली उधर दीपक खड़ा होता था प्रभु जी गर्म पानी रेडी है, तो दिन हो साढ़े पांच बजे हो छह बजे हो बोलता था गर्म पानी रेडी है, तो आना आना जाना आना है क्योंकि हमारा इधर टॉयलेट जैसे मतलब बैठने के लिए असुविधा है। सो हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ब्रह्मचारी इधर जो आते हैं उनको कंप्लीट हमारा तरफ से इतना हद तक हो सके हम लोग ऑलरेडी जो दिया है हमारा आलसी पर छोड़ के हम लोग से हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, तो पूरा माफ कीजिए। सो ये यात्रा हम लोग चाहते हैं कि ये बार बार हो जाए, तो हम लोग किधर भी ब्रह्मचारी यात्रा करते हैं तो हम महाराज से हरी हो जाए ताकि हम और ताकि सुविधा करें, ताकि हम लोग को इतना ब्रह्मचारी लोग एक बार इतना समय तक श्रवण करना, और हम लोग को भी नागेंद्र प्रभु बोल रहा था और श्रीजी पंडित प्रभु एक ब्रह्मचारी भी नहीं रहना ऐसा नहीं है, सब लोग इधर रहना है, तो हम लोग सोचा फिर हम लोग किंग करना है कोई दीप जलाना है नहीं, वो बोल रहा था सब लोग इधर रहने उसके लिए क्या करना है सोचिए, तो फिर उधर से कुक लाया गैस स्टोव लाया वेजिटेबल्स भी लाया हम लोग को, स्पेशली अंजानंदन प्रभु और दीपक प्रभु मैं सोच रहा था उनको जीरो बहुत उनको प्रेशर मतलब स्पेशली बेड़गाम ड्यूटी का मैनेजमेंट ऐसा था कि सब लोग को सुविधा को हमको लेके आ रहे, तो इसलिए ये कम्युनिटी जो है ये कम यूनिटी से नहीं है, ये सबका यूनिटी से ही हुआ। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप वापस बार बार इधर आए और
हमारा बोलो बोलो
बिना तक हुई है हमारे लिए सबके लिए। दो तीन दिन एक समय होना चाहिए कि हम अलग से जाकर सभी लोग मिल सकते हैं, क्योंकि क्या है हम तो इतने एक साथ नहीं बैठ के मतलब नहीं एक साथ आते। तो ये यात्रा में एक ऐसा संधि होता है कि हम सभी लोग लगातार 5 घंटे हम सुन रहे थे, 5-6 घंटे। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक पोषणदायक यात्रा हुई। और यात्रा में हम तो मैंने तो कुछ सेवा तो नहीं की, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने अच्छी तरह से सेवा की है यहाँ पर आने के लिए। तो बहुत ही इन्होंने, हम तो यात्रा का आनंद लिए, लेकिन इन्होंने पूरे 4-5 दिन लगातार इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं इन सबका भी आभारी हूँ, इन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए व्यवस्था किया। और पहले तो हम सोच रहे थे कि गोकुलधाम में कैसा व्यवस्था होगा, सबका इतने सारे लोग जाएंगे, क्योंकि हमने पहले पहली यात्रा की थी वो कुड़ाल में किया था, तो वहां पे बहुत सारी सुविधा थी, सब टाइम पे प्रसाद या जो भी है अच्छा रूम भी था। तो मैं सोचा था कि यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पर इतना व्यवस्था भी नहीं है करने के लिए। तो यहाँ पर इतना अपीलेंस था कि उससे भी ज्यादा यहाँ पर हमें अपीलेंस मिला कि अच्छा टॉयलेट बाथरूम, गर्म पानी, प्रसाद की व्यवस्था, और इतना उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया कि लग रहा है कि यहाँ पर ही यात्रा होनी चाहिए आगे भी। और महाराज ने भी सुंदर हमारे लिए क्लास दिए, रूप शिक्षा। वैसे 10 दिन में रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, तो वैसे कि मैंने भी पढ़ा था ये शिक्षाएं पहले चैतन्य चरितमृत में, लेकिन मैं समझ नहीं पाया इसको क्या अर्थ है इसका। तो आज 2-3 दिन में इतना महाराज ने हमको एक एक तात्पर्य, प्रभुपाद के तात्पर्य से भी इतना सुंदर तरीके से इतने सारे चार्ट महाराज जी ने पूरे विस्तार से हमें एक एक शब्द का भेद करके भी, तो इतना सुंदर तरीके से महाराज ने वर्णन किया। तो ऐसा लग रहा था कि ये शिक्षाएं खत्म ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लगातार शिक्षाएं चलती रहनी चाहिए। लेकिन अभी समय भी कम है हमारे लिए, हमें सेवा के लिए जाना है। तो महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि आगे भी ऐसी शिक्षाएं होती रहेगी तो बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण हम भी रूप गोस्वामी के अनुरूप बन सके और ऐसे ही इस आंदोलन में आगे हम प्रगति कर सके।
हरे कृष्ण। वैसे तो मुझे बहुत शर्मिंदा हो रहा है यहाँ पे खड़े होकर बोलने के लिए, क्योंकि मेरा इस यात्रा में कुछ भी योगदान नहीं है, शून्य है। जैसे मैंने कुछ भी सेवा नहीं किया, सिर्फ प्रसाद लिया और प्रवचन सुने, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया और किया नहीं। हरे राम गुरु और बाकी जो बेलगाम के भक्त थे उन्होंने बहुत सारा प्लानिंग वगैरह किया और इसको एक सक्सेस बनाया, यशस्वी यात्रा बनाया। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपलब्धि इसमें ये था कि हमारे जो गोकुलधाम के जो भी भक्त यहाँ पे थे उन सब के लिए श्रवण करने के लिए एक माध्यम बनाया यात्रा। नहीं तो जब भी यात्रा होते हैं, ब्रह्मचारी यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, तो कुछ भक्तों को यहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ता है, तो तब विचार आता है किसको छोड़ें किसको। तो मेरे मन में मुझे हमेशा बुरा लगता था कि अगर यदि मैं यात्रा जाता तो मुझे बुरा लगता है कि अरे उनको सुनने के लिए नहीं मिल रहा है और मैं स्वार्थी बन के यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे विचार मेरे मन में आता था, लेकिन इस यात्रा में मैं निश्चिंत होकर श्रवण कर सका, क्योंकि सब लोग हैं यहीं पर, सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था इस यात्रा का।
और दूसरी बात है कि हमने बहुत अच्छा धूमधाम का कीर्तन किया, जो बहुत सालों बाद मैंने यहाँ पे किया गौर निदाय के सामने, इतने अच्छी तरह से इतने कर्मचारी मिलकर, जो हम कुड़ाल में भी कर सकते थे लेकिन वहाँ पे गौर निदाय नहीं है, तो उससे अच्छा है यहीं पे हम भक्तों के सामने रहकर थोड़ा, जो भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, असुविधा आपको भी हुआ हमको भी हुआ, परंतु ये असुविधाओं को स्वीकार करते हुए यदि हम यहीं पे यात्रा करेंगे तो इससे फायदा ज्यादा है, तो ऐसे मुझे लगता है। इसलिए हम चाहते हैं, महाराज से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और सारे भक्तों से भी, यदि साल में दो बार भी यदि हम एकत्रित हों तो एक, ये तीन दिन का भी नहीं हो, ढाई दिन का यात्रा, तो ढाई ढाई दिन साल में यानी पांच दिन अलग अलग समय पर यदि हम करेंगे तो भी सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
दिसंबर में अगर करते हैं ना तो आने जाना पड़ता।
मान राम बद्र के
बोलो बोलो।
जब महाराज ने बताया कि हम कृषि में हम यात्रा करेंगे और ऐसे तय हो रहा था कि या तो गोकुलधाम या कुड़ाल जाएंगे, क्योंकि इन सबका इच्छा था कि गोकुलधाम, और मैं इधर आया था तभी, और गोकुलधाम भक्तों को सब पता चल गया था कि बड़गाम के भक्त इधर आएंगे करके, तो इधर ब्रजेश्वर प्रभु, अंजन नंदन प्रभु, समस्त वैष्णव प्रभु और हरिराम प्रभु बैठ के मीटिंग कर रहे थे। एक एक विषय के लिए मीटिंग कर रहे थे, पानी का प्लानिंग, टॉयलेट का प्लानिंग, हर एक चीज परफेक्ट मैनेजमेंट। जब हम बाहर देखते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारा चर्चा होता है, लेकिन गोकुलधाम में रहकर सब अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए पूरा प्लानिंग कर रहे थे एक्चुअली, तो बहुत हफ्तों से प्लानिंग कर रहे थे वो, ऐसे नहीं कि लास्ट मिनट में। जैसे महाराज ने प्रवचन में बताया ना कि 80% प्लानिंग 20% एग्जीक्यूशन, तो पूरा प्लानिंग किया था उन्होंने और बहुत उन्होंने अपना दिमाग लगाया था इसके लिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम पहले आ गए गोकुलधाम में तो उधर बोर्ड था कि किधर हमको चप्पल रखना है, और बाद में प्रसाद, पहला कार्यक्रम प्रसाद था, ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट के बाद ब्रजेश्वर प्रभु वो भक्तों को टूर लेके जाना था किधर क्या है दिखाने के लिए। कुछ ब्रह्मचारी जो इधर आते हैं उनको तो पता है सब, लेकिन जो नए ब्रह्मचारी थे वो पूरा विचलित हो जाते हैं, क्या किधर क्या है कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो हर एक चीज दिखाने के लिए तो वो टूर उन्होंने, तो हम देखेंगे हर एक जो स्टेज है, जो पूरा दिन में जो कार्यक्रम है उसके लिए सब उन्होंने प्लानिंग किया था अच्छी तरह से। सागर प्रभु को सेवा दिया था पानी गर्म करने के लिए, तो मैं रात में नींद मेरा टूट गया, तो 2 बजे मैं आया था स्नान करने के लिए, और 2 बजे वो आए थे पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि भक्त लोग 3 बजे आएंगे स्नान करने के लिए, तो 2 बजे वो आए थे पानी गर्म करने के लिए। और रंगोली का वो भी सब, तो ये जो सब प्लानिंग सब गोकुलधाम भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से किया था, और उधर से भी दलगाम से भी भक्तों ने अच्छी तरह से प्लानिंग किया था प्रसादम के लिए, तो हमको कुछ भी असुविधा नहीं हुआ इधर, एक भी असुविधा ऐसा कुछ नहीं हुआ जब 3 दिन का कथा चल रहा था। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सब भक्तों का, और विशेषता हमको बहुत अच्छा लगा सुबह का मंगल आरती, क्योंकि जब हम गोकुलधाम के भक्त इधर रहते हैं तो मंगल आरती उतना जबरदस्त नहीं होता है जैसा दो दिन बोला था मंगल आरती के समय, मंगल आरती और गुरु पूजा और शाम के गौर आरती में। और महाराज भी इसलिए सब भक्तों को निवेदन कर रहे थे कि शाम बहुत उत्साह मिला हमको और विशेषतः महाराज के प्रवचनों से हमको बहुत प्रेरणा मिला। ये सब भक्तों का हरे
कृष्ण बने बने
पहले बार मुझे बोला गया कि ये यात्रा है उपला में होने वाला है, भक्त साहब जो अपोज कर रहा था पानी का सुविधा नहीं है और इतने सारे भक्तों को रहने का सुविधा नहीं है, भक्तों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और सब सुविधा करके लिए हम तो रोहेश का बहुत ही बड़ा नुकसान था सबको मैनेज करके। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे मटेरियल नेचर स्ट्रांग रहती है और हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी और नहीं ला सकते हैं वहाँ पे एक्चुअली हम बहुत ही अफसोस ये करते हैं। लेकिन गोकुलधाम में ये उल्टा होता है, जहाँ पर मटेरियल नेचर स्ट्रांग रहता है खुश हो जाते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी वर्क नहीं होता है हम तो अफसोस ये महसूस नहीं करते हैं। हमें अच्छा लगता है